श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो सुमति नंदन ये जो कीर्तन किया है, इसमें कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। ये सप्तम गोस्वामी है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इसके बाद में गोस्वामी नहीं किसी को कहा गया, किंतु गौड़ मंडल के जितने भी आचार्य थे उस समय और बड़े बड़े विद्वान लोग थे, सब लोगों ने मिल करके भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी की उपाधि प्रदान की। हमारे हम लोग देखते हैं कि नरोत्तम ठाकुर, गोविंद दास जी, लोचन ठाकुर, प्रेमानंद आदि बहुत से कीर्तन पदों की रचना करने वाले लोग हो गए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को उनसे कम नहीं समझना। ये एक तरह से गदाधर पंडित के प्रकाश हैं, इसलिए इनको बहुत उच्च कोटि का ये समझना चाहिए। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर, पहले तो ये सर्वशक्तिमान अनादि आदि सबके सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण होकर के भी लीला के लिए जसोमती के नंदन हुए हैं, अबोध बालक जैसे। और ब्रजवर नागर, ब्रज के ये नागर है, गोपियां विशेष करके राधिका जी नागरी हैं। गोकुलरंजन कान, अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से गोपिल का और गोकुलवासी लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं, उनके अवतार का यही कारण है। भक्त विनोदनाय, भक्तों का विनोदन करने के लिए, भक्तों को विनोदन करने के लिए ही वो जगत में आते हैं। जिन लीलाओं को श्रवण करके भावी जगत में आने वाले जितने भी जीव हैं उनका उद्धार होगा। गोपी प्राण धन, गोपियों के प्राण धन विशेष करके श्रीमदिका राधिका, अपनी कोटि कोटि प्राणों को भी उनके चरणों की एक नख चंद्र का पर न्यौछावर कर देती हैं। मदन मनोहर, मदन को भी कामदेव को भी मोहिन करने वाला ही इनका सुंदर रूप और आकर्षण है। कालिय दमन विधान, कालिय का दंड विधान कर उसको वहां से निकाल करके बाहर कर दिया। अमल हरिनाम अमी अभिलाषा, ये कहने की यहाँ पर क्या सार्थकता है, क्या सार्थकता है? हाँ, सार्थकता है यदि कोई नाम को अच्छी तरह से करे श्रद्धा पूर्वक, नाम में ही कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सब उसमें आदमी देख सकता है। नाम में ही, ये नाम ही प्रकट होंगे। यशोदा का से जन्म ग्रहण कर रहे हैं, वृंदावन के नटवर हैं, काली का दमन विधान किया, जन्म ग्रहण किया, पूतना कुमार, जितनी भी लीलाएं हैं इस नाम में ही देख सकते हैं। विपन पुरंदर, अब इस नाम में अमीय विलासा, अमृतमय विलास है इनका, कृष्ण का, ये नाम में ही आप लोग देख सकते हैं। इसलिए तन नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलाम इत्योद। कृष्ण नाम करते हुए उनके लीलाओं को स्मरण करो, अपने आप स्मरण पथ में आ जाएंगे। विपिन पुरंदर, नवीन नागरवर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बजाया और ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब एक दूसरे को न देखते हुए सभी कृष्ण के पास में आई। ब्रज जन पालन, वृंदावन में कृष्ण के जन्म होने से पुतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि कितने भी विपत्तियां आई, सबको से रक्षा की इन गोप गोपियों की। और राजपंचाध्यायी का दूसरा विष जला प्याद प्याल राक्ष साध वर्ष मातुरात विष में आत्मजात विश्व तो भयात। कृष्ण ने सब प्रकार से उनकी रक्षा की। कृष्ण नहीं आते तो कौन से इतना उत्पात नहीं कराता कृष्ण, किंतु गोपों ने इसकी तनिक भी, नंद बाबा जसोदा ने तनिक भी इसकी चिंता नहीं की। नंद को धन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर, ऐसे हो करके गोपियों को प्रसन्न करने के उनके घरों में से मक्खन चुराते थे। मक्खन क्या चुराते थे, उनका हृदय ही चुराते थे। सुंदर नंद गोपाल जामुना टच, विशेष करके जमुना के टच पर गोपी बसन हर, गोपियों का वस्त्र हरण किया और रास रसिक सब लीलाओं की चूड़ामणि ये रास, रास को संपन्न किया। किसके लिए? श्रीमती राधिका जी की का महात्मा दिखलाने के लिए। हजारों गोपियां, लाखों करोड़ों गोपियां थी, चंद्रावली इत्यादि भी, ललिता विशाखा भी, किंतु राधिका जी यदि रास से निकल गई तो कृष्ण का रास किस लिए? वो भी उनके पीछे पीछे अंतर। अनराधिता अनराधितो नूनम भगवान हरि, न पारे हम निर्वध्य संदूजा। इसको दिखलाने के लिए ही कृष्ण ने रास लीला की। और श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति गुणोदास, इस प्रकार से कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने रचनाएं की हैं। विभावरी शेष में देखो, विभावरी शेष आलोक प्रवास, उसमें समस्त लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। हमारा यह संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर का चीर ऋणी है और ऋणी रहेगा।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पामुनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां शरणम्।
आज रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी भी संयुक्त है। और बार क्या है?
बुधवार
नहीं है, नहीं तो जयंती हो जाता है।
रात को बुधवार
आई जाएगा। रात में 12 बजे के बाद में, तब भारतीय नहीं, भारत में तो सूर्योदय। तो बड़े सुंदर ग्रह नक्षत्र भी जुड़े हुए हैं। आज कृष्ण का आविर्भाव होगा। जिस प्रकार से श्रीमद्भागवत इत्यादि शास्त्रों में मिलता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे। सृष्टि की शक्ति तो थी नहीं, तप तप शब्द जल में सुन करके कठोर 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या की, भगवान उनके हृदय में आविर्भूत हुए और उनको सृष्टि की शक्ति प्रदान की। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना किया, सृष्टि तो करूंगा किंतु मुझे कहीं अभिमान न हो जाए कि मैं ही सृष्टि करने वाला हूं, और यदि यह अभिमान आया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कृपा करके ऐसी कोई उपाय कीजिए जिससे कि मुझको अभिमान न आया, सृष्टि का कार्य आपकी इच्छा अनुरूप कर सकूं। तो उन्होंने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत उनको श्रवण कराया। संक्षेप में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला शक्ति इत्यादि, उनका स्वरूप, उनकी माया का स्वरूप इत्यादि सब उसमें वर्णन है, किंतु संक्षेप में और सूत्र में साधारण आदमी नहीं समझेगा। फिर उन्होंने कालक्रम से नारद जी को ये चतुर्श्लोकी भागवत दिया, और नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को दिया। व्यास जी नारायण के स्वरूप थे, उनके सत्यावेश अवतार थे। उन्होंने वेदों का विभाग किया, वेदों का विभाग करके बहुत कठिन, उसमें वृद्ध धर्मों का भी, वृद्ध विषयों का भी वर्णन है जो कि आदमी समझ नहीं सकता, किंतु है नहीं, इसलिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। किंतु ब्रह्म सूत्र साधारण आदमी समझ नहीं सकते, फिर क्या किया जाए? उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना की। कितने 54 प्रकार के पुराणों की उन्होंने रचना की, और इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का भी कुछ कुछ वर्णन हुआ। इतना करने पर भी उन्होंने विचार किया कि हमारा मन तृप्त नहीं है, अशांत है, कुछ न कुछ हमारी अभी त्रुटि हुई है, किंतु क्या मुझसे त्रुटि है समझ नहीं। हमने इतने धर्म कर्म की बातें, वेद वेदांत उपनिषद सब क्यों हमने प्रकाश किया, और फिर भी मेरा चित्त क्यों नहीं प्रसन्न हो रहा है, खिन्न है। इतने में नारद ऋषि वहां पर तंबूरा बजाते हुए उपस्थित हुए। व्यास, अरे तुम तो नारायण के समान हो, तुम्हारा मन खिन्न क्यों? तो नया गुरुदेव यही तो बात, हमने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, महाभारत को भी बनाया, सब कुछ किया, किंतु मेरा मन खिन्न नहीं हो रहा, खिन्न है। क्यों हो रहा है आप कृपा करके हमको बतलाइए। ओ, तुमने सब कुछ किया, किंतु जिस प्रकार तुमने अर्थ धर्म काम मोक्ष इनका विषय वर्णन किया, भगवान की लीला कथाओं का वर्णन तुमने नहीं किया, पुराणों में तुमने ऐसी बातें लिखी जिससे लोगों को तरह तरह के संदेह होने लगे, शिव पुराण में शिव का और शिव पुराण में शिव का और विष्णु पुराण में विष्णु का और कहीं गणेश का भी, ये सबका आप तुमने वर्णन किया, स्पष्ट रूप में नहीं बतलाया ये समस्त ईश्वरों का, ईश्वर का भी, ईश्वर परमेश्वर कौन है नहीं बतलाया आपने। इसके अतिरिक्त आपने कृष्ण स्वयं भगवान होकर के भी यशोदा नंदन है, और माँ यशोदा उनको डांटी दपटती हैं, बांधती हैं, लिखा कहीं नहीं लिखा, और उसे बढ़ करके कृष्ण ने मट्टी खाई और क्या क्या किया ये भी आपने, आपने ये लिखा कि ये गोपियों के वशीभूत हो जाते हैं, यशोदा मैया उनका बंधन करती हैं, राधिका के पैरों में वो पैया पड़ते हैं गोपियों के, उनकी बात क्या उनकी सखियों के भी, पहिया पढ़ते हैं, लिखा कुछ नहीं लिखा। भ्रमर गीत की बात, रासलीला की बात, ये सब वर्णन किया तो नहीं, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करूं, तुम भक्ति की समाधि में भगवान के लिए प्रार्थना करो और इसे तुम कृष्ण की लीलाओं को साक्षात रूप में दर्शन करोगे और फिर तुम इसका वर्णन करना। तब व्यास जी उनके चले जाने पर भक्ति जुगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पूर्ण संपूर्ण मायां चर्यत अपाश्याम। वो ध्यानस्थ हो गए भक्ति से, चित्त को एकाग्र करके भगवान में लगा दिया, भगवान के शरणागत हो गए। मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं। उस समय भगवान की कृपा से पूर्ण पुरुष को उन्होंने देखा, अकेले कृष्ण को नहीं, अकेले कृष्ण पूर्ण नहीं है जब तक उनके परिकर साथ में नहीं होंगे। उन्होंने नंद बाबा जसोदा मैया को भी देखा, उन्होंने मातृ स्थानीय गोपियों को भी देखा, उन्होंने प्रियाओं को, कृष्ण की प्रेयसियों को, ललिता विशाखा और सबके साथ में परिवेष्टित श्रीमती राधिका को भी देखा और उनकी रासलीलाओं से आरंभ करके जन्म से एकदम द्वारका की सारी लीलाएं, ये सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। इस प्रकार दर्शन करके बड़े संतुष्ट हुए। और जो जीव नहीं जानते हैं, अनादिकाल से बद्ध हैं, उनको कृपा करके उनके लिए ये श्रीमद् भागवत की को प्रकाश किया। दशा वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते पुंस शोक मोह भया। शोक मोह और अखिल जन्मों के जितने भी निखिल कष्ट हैं सबको दूर करने वाले और कृष्ण प्रेम को देने वाले, ऐसा ये श्रीमद् भागवत है। विशेष करके सर्ग विसर्ग उति मनवंतर इत्यादि और आश्रय इत्यादि 10 लक्षण जो हैं उसे 10 लक्षण से युक्त ये श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की। और उसमें उन्होंने जितनी भी लीलाएं थी ये सब लीलाओं का उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश किया। उन्होंने आरंभ किया कहां से, एकदम प्रारंभ से, कैसे ब्रह्मा जी शंकर को और गाय को लेकर पृथ्वी को लेकर फिर समुद्र के तट पर गए, उन्होंने उनकी उपासना की कौन मंत्र से, हाँ पुरुषोक्त से आराधना की और उनको हुआ सब आकाशवाणी हुई और वही सुने। रोदसाई ने कहा हमारे प्रभु अंशी, अर्थात तुम स्वयं भगवान कृष्ण, इसको जान लिया है तुम्हारे यहां आने के पहले से ही, इसलिए जितने देवता लोग हैं वो लोग भी और उनकी स्त्रियां भी ब्रज में, गोकुल में, मथुरा में प्रकट हो, प्रकाश जन्म ग्रहण करें। विशेष करके देवताओं की स्त्रियां, देवताओं माने क्या, बामन इत्यादि देव जैसे हैं उनकी स्त्रियां, वो लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हो और कृष्ण की लीला के लिए सहायता करें। और वो देवताओं की स्त्रियां श्रीमती राधिका जी की सेवा इत्यादि करें। और इसके बाद में देवताओं कहा जे तुम लोग जल्दी से आविर्भूत हो, कृष्ण का जल्द से जल्द ग्रहण होगा, जन्म ग्रहण होगा। इसके बाद में वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। रास्ते में ही कंस की बहन थी, चचेरी बहन थी, अपनी बहन नहीं, किंतु कंस भी उसको बड़ा आदर करता था, उसकी छोटी बहन थी। जब विवाह हुआ महाराज देवक ने बहुत दान दिए, रथ घोड़े हाथी सुवर्ण से मंडित ये सब चीजें और अनेकों दासियां बड़ी सुंदरी सुंदरी दी। और इसके पहले देवकी के विवाह के पहले और भी उनकी 6 बहनों का विवाह वासुदेव जी के साथ वसुदेव जी के साथ में हो चुका था। जब विवाह हो करके जब जा रहा था रथ पर, वर वधु जब चढ़े घर में जा रहे थे, तो कंस ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए रथ पर चढ़ गया और घोड़ों की लगाम अपने हाथ से पकड़ ली। जब रथ चलना ही आरंभ ही हुआ और उसी समय देवताओं ने कृष्ण का जन्म जल्दी से हो इसलिए आकाशवाणी छिप करके आकाश में ही की, रे मूर्ख जिसको तुम रथ में बैठा करके बड़े प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ का की संतान 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। 8वां गर्भ किस लिए कहा, इसमें भी रहस्य था। 8वें गर्भ का लड़का तुमको मारेगा ये नहीं कहा, 8वां गर्भ, 8वां गर्भ की माने संतान, संतान में लड़का की लड़की ये नहीं बतलाया। नहीं तो जबकि देवकी को कृष्ण पैदा हुए गोकुल में चले गए और वहां से वो लड़की को लेकर के आए, कंस को संदेह ना हो जाए कि ये लड़का हुआ और लड़की कहाँ से आ गई, इसलिए गर्भ पहले से ही कहा जिससे कि ये कंस समझ न सके, वो देवकी का ही पुत्री समझे और उसकी हत्या करे। इसलिए जितना पाप करेगा जल्दी उतना ही भगवान जल्दी से निकट आएंगे, बहुत सी इसके रहस्य इत्यादि। इस प्रकार से मारने के लिए प्रस्तुत हुआ, घोड़े की लगाम छोड़ दी और जिसे लगाम पकड़ा था उससे तलवार खींच ली और जिसे और एक हाथ से चाबुक था वो चाबुक को छोड़ करके केस पकड़ लिया और एकदम गले के पास में तलवार लेकर के मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने कहा दैववाणी मिथ्या नहीं होगी। उसने कहा कंस सोचा नास्तिक है, उसकी वाणी पर विश्वास नहीं किया, 8वीं संतान तुम्हें मारेगा, जब आकाशवाणी हुई तो मारेगा ही, यह तो निश्चित था। किंतु कंस ने समझाई इसको हम मिथ्या कर देंगे, इसको मार डालेंगे रोगा। और वसुदेव जी क्या समझे, जब वाणी ऐसी हुई आकाशवाणी तो जैसे तैसे मरेगा ही, इसलिए हमको कुछ प्रयास करना चाहिए। ये कह करके उसको साम दाम दंड भेद सब प्रकार से समझाया किंतु दुष्ट नहीं माना। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, देखो इसे तो तुम्हें भय नहीं है, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है और विवाह का उत्सव है, ऐसी दशा में मारना नहीं चाहिए। इसके जो लड़के होंगे प्रत्येक लड़के को ही मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम मार डालना। इस पर कंस उनकी बातों को विश्वास किया, ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है छोड़कर उनको छोड़ दिया देवकी को। वो अपने घर गए किंतु प्रसन्न नहीं हुए, जैसे ये दुष्ट लोग जब कभी भी कोई भी बात कर सकते और साधु लोग क्या नहीं कर सकते, कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पुत्र हुआ पहला और कंस को दे आए, कंस ने कहा बड़े प्रसन्न, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, ओ आप वसुदेव जी आप लड़के को ले जाइए जिससे तो मेरी मृत्यु नहीं है, ले गया। इतने में बिना बजाते हुए नारद महाराज पहुंच गए कंस के यहां, अरे तुमने लड़के को छोड़ दिया, तुम जानते नहीं हो ये विष्णु महाधूर्त है, उसे पार पाना कठिन है, उसकी गिनती कहां से होगी, एक से होगी कि दो से होगी कि सात से होगी, ये सब लड़के मिल करके तुम्हें मारेंगे ऐसा समझो। तो कंस के समझ में आ गया और झट फिर ला करके लड़के का वध किया सब। इस प्रकार से जब शंकरषण राम हुए, बहुत लंबी कथाएं हैं, 8 भी बजने को जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत का पाठ होगा सारा दिन, 5 बजे तक 6 बजे तक। सभी पहले आप बैठा ना, और इसके बाद में नंबर लिख देना, यदि रसानंद जी रहेंगे, ये श्याम रहेगा तो इनका भी नाम लिख लेना, नहीं तो और जो सन्यासी ब्रह्मचारी जो हैं सबका नाम लिखना। और ये सब लोग सारे दिन करेंगे, और दोपहर में हमारे प्रेम बल्लभ जी को रख देना, और इसके बाद में इस तरह से बीच बीच में तुम आ जाना और कथा होती रहे, बीच में भोगार्ती मंगल इत्यादि हो। और शाम को कितने बजे से, 8 बजे 8:30 बजे से वहाँ पर कलाकार लोग आएंगे, उनका कीर्तन होगा, रात में अभिषेक होगा, उसकी भी तैयारी सब करना। इस तरह से सभी तैयारियाँ होगा। इस प्रकार से कृष्ण ने अगासुर बकासुर सबको उद्धार किया, काली काऊ भी यहां से हटाया, और फिर केसी दैत्य इत्यादि का वध किया। इसके पहले रास भी किया, इसके बाद में फिर मथुरा आए, मथुरा में उनका यज्ञ पवित्र हुआ, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, वहां सुदाम इत्यादि के साथ में थे। और जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई तो गुरु जी को क्या देंगे, उनसे पूछा, आपको क्या मैं दूं दक्षिणा, मैं हमारा पुत्र मर गया और समुद्र में डूब करके उसको तुम ला दो। तो कृष्ण बलदेव जी के साथ में गए, पहले तो गए समुद्र में, समुद्र के अधिष्ठात्री देवता वरुण देव ने कहा, डूबा तो यहाँ किंतु शंख नाम का, शंखचूड़ का नाम का शंखासुर ने उसको निगल लिया। शंखासुर के को गए मारा, देखा जो वहां पर भी, फिर जम लोग से जाकर के उस लड़के को ले आए, ये मधुमंगल था, और गुरु जी को दक्षिणा दे करके फिर मथुरा आए। फिर मथुरा में जरासंध से कितनी बार युद्ध हुआ, फिर वहां से एक ही रात में मथुरा को सारी को द्वारका में पहुंचा दिया, नई नगर बनाया विश्वकर्मा ने, और वहीं पर रह करके जरासंध इत्यादि का वध किया। कुरु पांडवों के युद्ध में अर्जुन से कहा बीच में रख लो चलो, और जब गए तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन कह रहे हैं कब, कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद में जबकि लौटे हैं, महाराज युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहे हैं उस समय में कर रहे हैं, कृष्ण हमें ठग करके चले गए। उसमें मैं ये प्रसंग में बतला रहे हैं, क्या बतला रहा बोल रहा था, जोर से
कृष्ण अप्रकट के बाद युधिष्ठिर महाराज,
हाँ युधिष्ठिर महाराज के पास में गए और वहां पर कहने लगे, हा है कृष्ण हमें ठग करके चले गए, उन्होंने हमको मुझे कहा जरत, मैंने कहा है रथ ले चलो बीच में दोनों सेनाओं के, तो कृष्ण ले गए, हमारे साथी बने ये कृष्ण, स्वयं भगवान हो करके कि हमारे साथी बड़े, यही नहीं हमारे घोड़ों का पैर दबाया, उनको पानी पिलाया, और फिर वहां पर जाकर के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में द्रोण कर्ण दुर्योधन इत्यादि द्रोणाचार्य इत्यादि सबकी आयु हरण कर ली, इसलिए मैं तो निमित्त मात्र रहा, मैंने नहीं किसी को मारा, और विश्वरूप दिखला करके हमको विश्वास दिलाया, देखो हमने सबको मार रखा है, निमित्त मात्र भाव शब्द साथ, ऐसे कृष्ण हम लोग उनको समझ नहीं सके, आदर नहीं दे सके, हाय हाय अब वो हमें छोड़ करके चले। इस प्रकार से लीलाओं का संपादन करते हुए अंत में श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद अंत में नाम संकीर्तनम जस्य सब पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि, यहीं पर कह करके श्रीमद् भागवत को समाप्त। अब ये होगा, अभी परिक्रमा कर लेगा भाई, कोई चौकी इत्यादि दे देना जो वक्ता लोग बैठेंगे ऊपर, और तब बताएगा।